ओम शांति।
ओम शांति।
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर स्वयं निराकार परमात्मा ने जो अमूल्य विश्व कल्याणी महावाक्य उच्चारे, उसी के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत कर रहा है विश्व का अंतिम सत्य तथा भारत की प्राचीन दैवी संस्कृति का साक्षात्कार कराने वाला एक आध्यात्मिक महानाट्य सत्य महाभारत।
महाभारत की वास्तविकता प्रस्तुत कर मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करने वाला एक अप्रतिम नाट्य सत्य महाभारत।
अंधश्रद्धा का पूर्णतः निर्मूलन कर यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान एवं मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य देने वाला विश्व का सबसे कल्याणकारी महानाट्य
सत्य महाभारत।
सत्य महाभारत। इस महानाट्य में भाग लेने वाले कलाकार इस प्रकार है। विशेष निवेदन, श्रीमती गौरी लागू।
प्रास्ताविक एवं अंतिम कथन, भ्राता राहुल सोलापुरकर।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भूमिका, भ्राता निमिष तोटे।
महावीर अर्जुन की भूमिका, भ्राता सुहास कुलकर्णी। संगीत दिग्दर्शन तथा गायन, श्रीमती चारुशिला बेलसरे। विशेष सहभाग, भ्राता धनंजय साठे एवं भ्राता प्रमोद चिल्लार। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, राजयोगिनी सुंदरी बहन जी एवं पद्मा बहन जी, ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र, मीरा सोसाइटी, पुणे।
निमित्त लेखक, निर्माता एवं निर्देशन, ब्रह्मा कुमार जगदीश दीक्षित।
ध्वनि मुद्रण, भ्राता मुकुंद फड़कले, स्टूडियो एलकॉम, पुणे, महाराष्ट्र। ओम शांति। आज आपको इस नाटक का तीसरा भाग श्रवण करना है। पांच विकार और राजयोग, ये पांच विकार ही मनुष्य आत्माओं के दुखों का मूल कारण है। ये पांच विकार ही मनुष्य आत्माओं को पतित करते हैं, परंतु राजयोग वो शस्त्र है जिससे पांच विकार पूर्णतः नष्ट होते हैं। यदि आपको पांच विकारों पर विजय प्राप्त करके पावन बनना है तो अपने जीवन में राजयोग का प्रयोग अवश्य करें।
राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन
हे श्री हरि, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मैंने तुम्हारा प्रेमयुक्त प्रणाम स्वीकार किया है पार्थ।
हे गोपाल कृष्ण, पांच विकार मानव मात्र का किस प्रकार अकल्याण करते हैं और उससे आत्मा का पतन होकर पुण्यात्मा का पापात्मा में परिवर्तन कैसे होता है, इसका महत्वपूर्ण स्वाध्याय आज आरंभ हो रहा है।
भरत श्रेष्ठ, ये पांच विकार ही दुख एवं अशांति की जड़ है। ये पांच विकार ही कर्म भोग का बीज है। इन पांच विकारों को ही गीता में असुरी गुण कहा है। पांच विकारों के कारण ही आत्मा पतित होती है, अर्थात उसका चारित्रिक पतन होता है। पांच विकारों के कारण ही यह मनुष्य सृष्टि नरक बनती है और पांच विकारों के कारण ही तो भगवत गीता, अनेक धर्मशास्त्र तथा आध्यात्मिक शास्त्र निर्माण हुए हैं। यदि इस संसार में विकार ही नहीं होते तो ना कभी शास्त्र बनते, ना आत्मा पापात्मा बनती और ना ही परमात्मा को कभी पतितों को पावन करने अर्थ इस धरा पर आना पड़ता। अर्जुन, तुम तो इन पांच विकारों को भली भांति जानते हो। वो पांच विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार। इनमें से काम, क्रोध, लोभ के प्रति भगवत गीता में बड़ा शाब्दिक प्रहार किया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध, लोभ ये तीन नरक के द्वार आत्मा का विनाश कराने वाले हैं, अतः तीनों का भी त्याग करना चाहिए। पार्थ, गीता में काम विकार को इसलिए महाशत्रु कहा गया है कि इस एक विकार के कारण ही अन्य विकार निर्माण होते हैं। अतः हे अर्जुन, अंतर्मुखी होकर अपने मन का परीक्षण करो कि इस काम विकार के प्रति आज तक कितने संकल्पों की शक्ति व्यर्थ गंवाई। ये विकार ही पवित्र, शुद्ध एवं निर्मल मन को मलिन बना देता है। अतः हे पार्थ, अपनी जीवन नौका इस विषय वैतरणी नदी से पार करो। ये विकार जल प्रवाह में निर्माण होने वाले भंवर समान है। इसमें एक बार मानव फंस गया तो उससे मुक्त होना कठिन है। यदि इस भंवर को तोड़ना है तो उसका शस्त्र है अलौकिक दृष्टि, अर्थात तुम्हें सभी को अलौकिक तथा आत्मिक दृष्टि से देखना है। हे महावीर, इस एक काम विकार को, इस महाशत्रु को तुम नष्ट करोगे तो बाकी समस्त विकार नष्ट करना सहज है। क्या विचार कर रहे हो पार्थ?
केशव, मैं इस विकार का त्याग कैसे करूं? ये तो गृहस्थियों का प्रथम धर्म है, तो प्रथम कर्तव्य भी है। जिस विकार को मैंने अभी तक अपना जीवन साथी समझा उसे ही नष्ट कर दूं? नहीं केशव, नहीं, इस विकार का त्याग करना मेरे लिए कठिन है। यदि समस्त गृहस्थी मनुष्य इस विकार का त्याग करेंगे तो हे ऋषिकेश, ये मनुष्य सृष्टि एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस पर मैंने पहले ही विचार किया है। तब मेरी बुद्धि का निर्णय यही हुआ था कि जबकि परमात्मा ने स्त्री पुरुष निर्माण किए हैं तो काम विकार का व्यवस्थापन भी उसी ने ही निर्माण किया होगा।
अज्ञान की भी कोई परिसीमा होती है पार्थ। ये अज्ञान ही अधर्म निर्माण करता है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। अर्थात हे पार्थ, जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, अर्थ का अनर्थ कराती है, वो बुद्धि तमोगुणी है। पार्थ, तुम तो तमोगुण के अधीन होकर अपने विचार प्रकट कर रहे हो। भगवान थोड़े ही स्त्री पुरुष निर्माण करता है। स्त्री पुरुष निर्माण करना ये तो प्रकृति का काम है। अब विचार करो भरत श्रेष्ठ, जिस काम विकार से मनुष्य पतित होता है उसे पतित पावन परमात्मा थोड़े ही निर्माण करेगा। परमात्मा मनुष्य आत्मा में भोग बल नहीं परंतु योग बल निर्माण करता है। अनुज, तुम्हारा काम विकार का समर्थन सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि कल तो तुमने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि मैं पांच विकारों के साथ युद्ध करूंगा और आज तुम इस प्रथम विकार के सम्मुख ही अपनी पराजय स्वीकार कर उसका विपरीत समर्थन भी कर रहे हो। पार्थ, तुम किस काम विकार का समर्थन कर रहे हो, जिस विकार ने देवी देवताओं को भी दैवी राज सिंहासन से खींचकर नीचे उतार दिया, जिसके कारण ही अनेक सम्राटों में युद्ध होकर अनेक साम्राज्य नष्ट हो गए, जिस विकार के कारण ही पूज्य देवी देवता पुजारी हो गए, जिस विकार के कारण ही इस वसुंधरा का स्वर्ग से नरक में परिवर्तन हो चुका है। जिस विकार के कारण अनेक तपस्वी सत्पुरुषों की तपस्या भंग हो चुकी है और जिस विकार के कारण ही आज के समाज में अनेक समस्याएं निर्माण हुई है, उसी काम विकार का तुम समर्थन कर रहे हो अर्जुन। धन्य हो अर्जुन, धन्य हो।
क्षमा करे मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु वर्तमान समय का सत्य यही है कि इसी समाज में मेरे जैसा ही विचार करने वाले कोटि कोटि मनुष्य है। इतना ही नहीं, परंतु 16,000 नारियों की कथोकल्पित कहानी की आधार से वे आपको भी विषय विकारी समझते हैं। मैं ये जानता हूं कि आप संपूर्ण पवित्र है। अब समस्या ये है कि इस अज्ञानवश समाज को कैसे समझाएं।
हे पार्थ, भगवत गीता के वचन द्वारा अभी अभी मैंने ये निर्देश किया था कि काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार है। अब चिंतन करो कि मैं तो स्वर्ग में निवास करने वाला संपूर्ण पवित्र देवता हूं। मैं इन विकारों को अपना कर स्वयं के लिए नरक का द्वार थोड़े ही खोलूंगा। भरत श्रेष्ठ, तुम तो जानते हो कि मयूर पंख मेरे संपूर्ण निर्विकारी अवस्था का प्रतीक है। इस संसार में केवल मयूर ही निर्विकारी पक्षी है जो दैहिक काम विकार से मुक्त है। अतः मयूर पंख अपने मुकुट में वही रख सकता है जो संपूर्ण निर्विकारी है। आज तक मेरे कई चित्र निर्माण हुए हैं जिसमें मेरे मुकुट में मयूर पंख अवश्य होता है, और वही मयूर पंख आज भी तुम मेरे रत्न जड़ित मुकुट में देख रहे हो। ये भी चिंतन करो कि यदि मैं विकारी होता तो भविष्य में ना मेरा मंदिर बनता, ना मेरा गायन पूजन होता। अनुज, जो सभी विकारों से मुक्त है, जो संपूर्ण पवित्र है, वही देवता है और वही मंदिर लायक है। इस प्रकार समाज के सम्मुख मेरी वास्तविकता प्रस्तुत करो पार्थ।
हे ऋषिकेश, मैं आपकी वास्तविकता समाज के सम्मुख रखकर यही सिद्ध करूंगा कि आप संपूर्ण निर्विकारी है।
पार्थ, ये सदा ध्यान रहे कि ना परमात्मा विकारी है, ना ये श्री कृष्ण विकारी है। भरत श्रेष्ठ, विकारी तो आज का संसार बन चुका है और उसे ही संपूर्ण पवित्र बनाने अर्थ परमात्मा अवतरित हुआ है। यदि इस संसार को संपूर्ण पवित्र बनाना है तो प्रथमतः तुम इस काम विकार को नष्ट करके स्वयं पवित्र बनो पार्थ।
हे वासुदेव, ये काम विकार कहां से और कैसे निर्माण होता है?
इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर् विमोहत्तेश ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि हेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि इंद्रिया, मन एवं बुद्धि काम विकार के निवास स्थान है। जब इस स्थान से काम को आश्रय प्राप्त होता है तब ये काम ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अतः हे भरत श्रेष्ठ, प्रथमतः इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान एवं विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक नष्ट करो। पार्थ, यदि काम विकार को अंश वंश सहित नष्ट करना है तो उसके लिए आवश्यक है देहाभिमान की वृत्ति में परिवर्तन कर आत्माभिमानी वृत्ति निर्माण करना, और उसके लिए दृष्टि का परिवर्तन अति आवश्यक है। देखो अर्जुन, दृष्टि नहीं बदलेगी तो वृत्ति भी नहीं बदलेगी, क्योंकि वृत्ति का आधार दृष्टि है और दृष्टि का आधार वृत्ति है। यदि हम एक ही परमात्मा की संतान है तो पारलौकिक दृष्टिकोण एवं आत्म स्वरूप में हम सभी एक दूसरे के भ्राता है अनुज। अतः लौकिक संबंध में रहते हुए भी हमें एक दूसरे के अविनाशी संबंध एवं अविनाशी आत्म स्वरूप को ही देखना है।
हे ऋषिकेश, प्रतिदिवस भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति संपर्क में आते हैं, उन सभी को आत्म स्वरूप में देखना बड़ा कठिन कर्म है।
पार्थ, तुम्हारी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास इतना उच्च प्रति का होना चाहिए कि यदि तुम्हारे सम्मुख कोई सुंदर स्त्री और कोई मलिन व्यक्ति भी आए तो तुम्हारे मन में ना काम विकार उत्पन्न हो और ना ही घृणा। अनुज, आत्मा रूपी हीरा सुंदर पेटिका में हो अथवा मलिन वस्त्र में, हीरा तो हीरा ही है। अतः तुम्हें केवल हीरे समान आत्मा को ही देखना है। यही दृष्टि काम के वृत्ति को ही नष्ट कर देती है। हे महावीर, स्वयं का देह और अन्य आत्माओं का देह ही माया की निर्मिति का प्रथम स्थान है, वही काम और मोह को उत्पन्न करता है। अतः हे पार्थ, इस स्वमान की कभी विस्मृति ना हो कि मुझ आत्मा के पिता परमात्मा पवित्रता के सागर है और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। यही स्वमान तुम्हें काम विकार से मुक्त करेगा, यही स्वमान तुम्हारा जीवन पवित्र करेगा।
हे पद्मनाभ, मुझे अपना जीवन पवित्र करना ही है, परंतु इस शरीर का अल्प मात्रा में क्यों ना हो आकर्षण रहता ही है।
अनुज, तुमने दीप पात्र तो अवश्य देखा होगा। जब दीप पात्र में ज्योत होती है तो केवल ज्योत ही दिखाई देती है, परंतु ज्योत जब बुझती है तो केवल मिट्टी का दीप पात्र ही दिखाई देता है। उसी प्रकार यदि मन में देह अभिमान की मिट्टी है तो केवल ये देह रूपी पात्र ही दिखाई देता है। अतः तुम्हें इस देह रूपी पात्र के साथ आत्म ज्योति को अवश्य देखना है। यदि आत्मज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी शरीर का आकर्षण शेष है तो उसके लिए आवश्यक है योग साधना। योग साधना से शरीर का आकर्षण नष्ट होकर आत्मा को केवल परमात्मा का आकर्षण निर्माण होता है। पार्थ, जिसे परमात्मा का आकर्षण है उसे और कौन आकर्षित कर सकता है? शरीर तो एक मिट्टी का या अस्थि मांस का पुतला है। यदि शरीर का ये चर्म कवच निकल जाए तो तुम इसे देखना भी पसंद नहीं करोगे। अतः शरीर का आकर्षण सदा के लिए नष्ट करो भरत श्रेष्ठ, सदा के लिए नष्ट करो।
हे श्री हरि, आपने ठीक ही कहा, यह शरीर मिट्टी का पुतला है और हमें देह रूपी मिट्टी को नहीं परंतु आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति को ही देखना है। मैं अवश्य ही उस ज्योति को देखने का अभ्यास करूंगा।
अनुज, शरीर तो केवल कर्म करने का साधन है। ज्ञानी वो है जो साधन से नहीं परंतु साधक से अर्थात आत्मा से प्रेम करता है। हे पार्थ, काम विकार पर विजय प्राप्त करने से ही तुम जगतजीत एवं मायाजीत बन जाओगे। निस्संदेह ये काम विकार केवल तुम्हारा ही शत्रु नहीं परंतु समस्त मनुष्य सृष्टि का भी शत्रु है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवाहा महाशनो महापापमा विद्धयेन मिह वैरिणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध ही सभी पापों की जड़ है। वही इस जगत के सर्वभक्षक महापापी शत्रु है। परंतु इन महापापी शत्रुओं को नष्ट करना है तो उसके लिए पहला शस्त्र है ज्ञान और दूसरा शस्त्र है योग। योग से कर्मेंद्रिया मन बुद्धि दृष्टि वृत्ति शीतल और शांत हो जाती है। इंद्रियों का आकर्षण सदा के लिए नष्ट होता है। राजयोग से ही आत्मा में आदि अनादि स्मृतियां जागृत होती है। आत्मा में सामर्थ्य आता है। ज्ञान और योग वो प्रकाश है जिससे विकार रूपी अंधकार सदा के लिए नष्ट होता है। पार्थ, योगी बनने के लिए कई वर्ष लगते हैं परंतु योगी से भोगी बनने के लिए एक क्षण भी पर्याप्त होता है और माया भी उसी क्षण की प्रतीक्षा करती है। भरत श्रेष्ठ, आत्मा का पतन सहज है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो उद्धार के लिए किया जाता है और उद्धार के लिए आवश्यक है निर्विकारी एवं पवित्र जीवन। पवित्र होने के उपरांत पवित्रता स्वप्न में भी खंडित ना हो, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी यही तुम्हारा आदि रूप है, यही तुम्हारा संपन्न देवता रूप है, यही तुम्हारा पूज्य रूप है। पार्थ, यही तुम्हारा पूज्य रूप है।
हे राधा रमन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, काम जैसे महाशत्रु को नष्ट कर मैं मन वचन कर्म से पवित्र बनूंगा। हे पद्मनाभ, अब मुझे अपने आदि स्वरूप की स्मृति आई है, मेरा वो दिव्य आदि स्वरूप मुझे पुनः प्राप्त करना है और इस प्राप्ति में सबसे बड़ा व्यत्यय काम विकार का है। मैं निश्चित रूप से काम विकार पर विजय प्राप्त करूंगा। हे केशव, इस काम विकार के उपरांत उस महाभयंकर क्रोध का नाम आता है। ऐसी कितनी कहानियां मैंने सुनी है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी क्रोधवश होकर शापवाणी उच्चारते हैं। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना कोई सहज पुरुषार्थ नहीं है?
हे महावीर, समर्थ स्मृति से आत्मा में सामर्थ्य निर्माण होता है। अतः क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा धर्म ही शांति है, मैं शांति धाम का निवासी हूं, मेरे पिता शांति के सागर है, शांति तो मेरे गले का हार है। अनुज, इस प्रकार का चिंतन यदि मन में चलता रहेगा तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना कोई कठिन विषय नहीं है। इस प्रकार ज्ञान योग एवं मनन चिंतन द्वारा मनुष्य आत्मा शांत स्वरूप बनने का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है।
हे पद्मनाभ, मनुष्य में क्रोध निर्माण होने का मूल कारण क्या है? इस क्रोध की उत्पत्ति होती कहां से है?
हे वीर धनंजय, मनुष्य को क्रोध आने का मूल एवं प्रथम कारण है देह अभिमान, क्योंकि देहाभिमान के कारण ही मनुष्य में काम विकार निर्माण होता है। जब काम की तृप्ति नहीं होती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति निर्माण हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न निर्माण होने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होने से विस्मृति होती है, विस्मृति से निश्चय बुद्धि नष्ट होती है। इस प्रकार क्रोध से मनुष्य आत्मा का सर्वनाश होता है।
हे वासुदेव, अब मैंने प्रतीत किया है कि कामना पूरी ना होने से मनुष्य में क्रोध निर्माण होता है। इसी प्रकार क्रोध निर्माण होने के अन्य कौन से कारण हैं?
पार्थ, इसके उपरांत क्रोध निर्माण होने के कई कारण हैं। अपेक्षित घटना जब मनुष्य का अपेक्षा भंग करती है तब उसे क्रोध आता है, जब उसका कोई विश्वासघात करता है तब क्रोध आता है, जब तन और धन की कोई हानि करता है तब उसे क्रोध आता है, जब कोई अपमान करता है तब उसे क्रोध आता है, जब अन्य कोई उसके प्रिय व्यक्ति के प्रति निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करता है तो क्रोध आता है, और जब कोई उसके अवगुणों का वर्णन उसके ही सम्मुख करता है तो उसको क्रोध आता ही है। पार्थ,
हे ऋषिकेश, अन्य व्यक्तियों का अयथार्थ कर्म देखकर मुझे तनिक क्यों न हो क्रोध आता ही है।
पार्थ, उसके लिए यथार्थ चिंतन करो कि इस विशाल नाटक में प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी भूमिका है और मुझे शांत स्वरूप आत्मा की भूमिका निभानी है। अन्य व्यक्ति की भूमिका देखकर मैं अपनी भूमिका में क्यों परिवर्तन करूं? अतः हे पार्थ, इसकी कभी विस्मृति ना हो कि शांति ही तुम्हारा कर्म है और शांति ही तुम्हारा धर्म है। अशांति के युग में शांति निर्माण करना ही पुरुषार्थ है। भरत श्रेष्ठ, अपनी आत्मा को शांति की शक्ति से इतना संपन्न करो कि शांति तुम्हारे नयनों में स्पष्ट दिखाई दे।
हे श्रीनाथ, आपका मार्गदर्शन एवं शिक्षा यथार्थ है, परंतु कार्य व्यवहार में कभी कभी क्रोध शस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ता है।
अनुज, क्रोध शस्त्र का प्रयोग तब करना पड़ता है जब मनुष्य के पास आत्मबल न्यून हो जाता है। प्रथमतः तुम आत्मबल द्वारा स्वस्थिति को परिवर्तन करो। स्वस्थिति में परिवर्तन होगा तो परिस्थिति में अवश्य ही परिवर्तन होगा। अतः सदा योग युक्त, युक्ति युक्त होकर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करो। पार्थ, जब नारद मुनि ने वाल्या का परिवर्तन किया तब नारद मुनि ने क्रोध किया था? महात्मा गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाला का परिवर्तन किया तब गौतम बुद्ध ने क्रोध किया था? और कुछ वर्ष पहले की घटना है, भूतपूर्व डकैत पंचम सिंह का किसी ब्रह्मा कुमारी ने राजयोगी में परिवर्तन किया तब उस ब्रह्मा कुमारी ने क्रोध किया था? अर्थात किसी ने भी जीवन परिवर्तन के लिए क्रोध शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, परंतु स्वस्थिति, आत्मबल एवं आत्मिक प्रेम, इन शस्त्रों का प्रयोग किया था। पार्थ, क्रोध वो अग्नि है जो स्वयं को भी जलाती है तो औरों को भी जलाती है। पार्थ, क्रोध वो अग्नि है जो प्रेम रस को नष्ट करती है। अतः आज के समाज का थोड़ा परीक्षण करो, इसी समाज में ऐसे कई मनुष्य हैं जो क्रोध से अत्यंत पीड़ित है। उनके एक क्षण का क्रोध किसी के मृत्यु का कारण भी बन सकता है। भरत श्रेष्ठ, क्या यह सत्य नहीं है कि आज तक क्रोध के कारण अनेकों की मृत्यु हो चुकी है? अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस समाज को क्रोध से मुक्त करना। यदि तुम्हें समाज को क्रोध से मुक्त करना है तो प्रथमतः स्वयं को क्रोध मुक्त करो। अर्जुन, तुम्हें तो संपूर्ण विश्व में शांति प्रस्थापित करनी है, तुम शांति सागर परमात्मा के शांति दूत हो। अतः ये चिंतन करो कि मुझे तो समस्त विश्व को शांति का संदेश देना है। इस प्रकार का चिंतन केवल क्रोध को ही नहीं परंतु उसके वंश को अंश सहित नष्ट कर देगा। हे भरतश्रेष्ठ, शांति एक महान और कल्याणकारी शक्ति है। इसकी सदा स्मृति रहे तो क्रोध अंशमात्र भी नहीं आ सकता। अब मन वचन कर्म से अंतर्बाह्य शांति प्राप्त करो, अर्थात तुम्हारी अंतरात्मा से सदा ओम शांति का ही स्वर आना चाहिए।
हे मनमोहन, अब मेरे समझ में आया कि क्रोध से आत्मा का कितना अकल्याण होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इसका त्याग करना आवश्यक है। क्रोध का त्याग ही केशव, क्रोध का त्याग ही विश्व शांति का आरंभ है। इस क्रोध का त्याग करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, अतः क्रोध का त्याग मैं अवश्य करूंगा। अब क्रोध के उपरांत आता है लोभ, परंतु हे ऋषिकेश, लोभ का त्याग तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मन में लोभ ही नहीं तो धन प्राप्त करना असंभव है।
तुम्हें यह किसने कहा कि धन प्राप्त करना लोभ है? पार्थ, धन प्राप्त करना लोभ नहीं है, परंतु अनैतिकता एवं अन्याय से धन प्राप्त करना लोभ है। पार्थ, ये लोभ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी भ्रष्टाचारी बना देता है। जिसके पास भ्रष्टाचार का धन है, उसके जीवन में अनेक समस्याएं निर्माण होती है, फिर उसका जीवन ही अशांत हो जाता है। अधिक धन से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये विचार तो प्रत्येक मनुष्य के मन में होता है। पार्थ, ये लोभ ही अनेक दुष्कृतियों की जड़ है। अतः ये सदा ध्यान रहे कि केवल स्थूल धन से मनुष्य शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। पार्थ, सबसे अमूल्य धन तो शांति, संतुष्टता, चरित्र संपन्नता एवं पवित्रता का है। वर्तमान समय निर्धन को धन आने की चिंता है और धनवान को धन लुटा जाने की चिंता। निर्धन को धनवान के धन प्रति लोभ होता है तो धनवान को अपने धन प्रति लोभ होता है। सिद्धांत यही है कि वर्तमान में ना निर्धन सुखी है ना धनवान। धन के व्यतिरिक्त वस्तुओं का लोभ भी मनुष्य के मन में होता है। हे अर्जुन, यदि लोभ पर विजय प्राप्त करनी है तो जीवन में संतुष्टता धारण करो। जो संतुष्ट है वास्तव में वही धनवान है। जिसके पास संतुष्टता का धन नहीं है मानो वो निर्धन ही है। अतः हे पार्थ, मन में जो लोभ के संकल्प है उसे सदा के लिए नष्ट कर दो। आज का समाज लोभ की श्रृंखला में बंधा हुआ है। अब उस श्रृंखला से स्वयं को मुक्त कर समाज को भी मुक्त करो। यही तुम्हारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व है।
हे गोपाल कृष्ण, मैं अपना उत्तरदायित्व स्वीकार कर परमात्मा को वचन देता हूँ कि लोभ की समस्त श्रृंखला मैं तोड़ दूंगा। इस प्रकार मैं लोभ का पूर्णतः निर्मूलन करूंगा। अब लोभ के पश्चात आता है मोह का क्रम। हे केशव, इस मोह के प्रति मैं अत्यंत संभ्रमित हूँ, क्योंकि प्रेम और मोह के अंतर को मैं नहीं समझ रहा हूँ। हे केशव, प्रेम का अंत दुख में क्यों होता है?
हे महावीर, प्रेम की ही विकृति मोह है। प्रेम करते करते उसका परिवर्तन मोह में कब होता है ये समझ में ही नहीं आता। मानव का पहला मोह स्वयं के देह प्रति और दूसरा मोह संबंधियों के देह प्रति होता है। ये देह जब नष्ट होने का समय आता है तो मोह के कारण ही दुख होता है। दुख के अश्रु ही मोह का प्रमाण है। इस मोह की जड़ें उखाड़ना कोई सहज कर्म नहीं है। अर्जुन, जन्म के उपरांत मृत्यु, ये तो अटल एवं चिरंतन सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जिस प्रकार वृक्ष को पहले फूल लगता है, फूल का फल बनता, और एक ना एक दिन ऐसा आता है जो फल को वृक्ष से अलग होना ही पड़ता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति। जिस प्रकार बाल अवस्था, युवावस्था एवं वृद्ध अवस्था जीवात्मा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उसे एक देह नष्ट होने के पश्चात दूसरा देह अवश्य प्राप्त होता है। अतः इस विषय में ज्ञानी एवं धैर्यवत पुरुष कभी भी मोहवश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है जन्म मृत्यु तो प्राकृतिक स्थित्यंतर है। अतः किसी के भी मृत्यु के उपरांत मनुष्य ने दुखी नहीं होना चाहिए। वास्तव में हम सभी अमरनाथ की अमर संतान है। हे अर्जुन, ना तुम्हारा विनाश होता है ना मेरा विनाश होता है। विनाश तो इस जड़ शरीर का होता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मानव पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र परिधान करता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस पुराने एवं निरुपयोगी शरीर का त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करती है।
हे ऋषिकेश, इस मृत्यु के लिए समस्त संसार ही भयभीत एवं दुखी है, परंतु उसे तो आप सहज ही समझ रहे हैं।
पार्थ, जब मनुष्य वस्त्र बदलता है तो उसे थोड़े ही दुख होता है, फिर आत्मा का शरीर वस्त्र बदलने में मनुष्य को इतने कष्ट तथा दुख क्यों होता है? जन्म मृत्यु तो केवल आत्मा का शरीर वस्त्र बदलना है पार्थ। ये शरीर वस्त्र बदलने की प्रक्रिया तो सृष्टि के आदि काल से चली आई है, इसे कौन टाल सकता है? इसलिए हे अर्जुन, जन्म मृत्यु के इस रहस्य को जानकर किसी के भी मृत्यु के उपरांत तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम् जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसे जन्म है उसे मृत्यु है, मृत्यु के उपरांत पुनः जन्म भी निश्चित है, अतः इस अटल घटना का शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, इस मृत्यु लोक में भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर तुम्हें मृत्युंजय बनना है। मृत्यु का अधिकार केवल तुम्हारे शरीर पर है, आत्मा पर उसका कोई अधिकार नहीं। अतः स्वयं को अविनाशी आत्मा निश्चय करो। पार्थ, सतयुगी मानव ही मृत्युंजय मानव था। वहां का समाज आत्माभिमानी होने के कारण मृत्यु के उपरांत कदापि कोई शोकाकुल नहीं होता था। इस कलियुगी मृत्यु लोक में दुख, शोक और अशांति है। इसका मूल एवं एकमात्र कारण है आज के मानव में देह अभिमान है। कहते भी है, झूठी माया झूठी काया, झूठा है सब संसार। अतः इस देह एवं देह के संबंधियों से अपना मोह नष्ट करो। ये मोह तुम्हें जीवन के अंत तक दुख ही देता रहेगा।
हे ऋषिकेश, जब निकटवर्ती की मृत्यु होती है तब मन में निर्माण होने वाले अत्यंतिक दुख से हम अपने आप को कैसे संवारें?
पार्थ, ऐसे समय प्रत्येक मनुष्य आत्मा ने गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त करनी चाहिए।
हे जनार्दन, स्थितप्रज्ञ अवस्था कौन प्राप्त कर सकता है तथा स्थितप्रज्ञ मनुष्य की परिभाषा क्या है?
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टाः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः, वीतराग भय क्रोधाः स्थितधीर मुनिरुच्यते। हे अर्जुन, जब मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है एवं सदा संतुष्ट रहता है, जिसे दुखों की प्राप्ति होने पर भी मन में कभी उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, जिसके राग भय तथा क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मुनि को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। स्थितप्रज्ञ वही रहता है जो आत्मज्ञानी है। पार्थ, अब तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, अतः तुम्हें किसी के भी मृत्यु के उपरांत दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करे कि ये दुख भरा संसार निर्माण करने में मैं कितना निमित्त हूं। अतः हे अर्जुन, मोह और मोह से निर्माण होने वाले दुख को सदा के लिए विदाई दो।
नहीं मनमोहन, ये विदाई देना बहुत कठिन है, क्योंकि जब किसी की अल्प आयु में ही मृत्यु होती है तो दुख होना स्वाभाविक है।
देखो अनुज, जब कोई आत्मा अपने शरीर का परित्याग करती है तो इतना ही समझना है कि उस आत्मा का अन्य आत्माओं के साथ जितने समय संबंध था उतने ही समय वो आत्मा साथ रहने वाली है। पार्थ, किसका साथी कितने समय साथ देगा ये तो इस अशाश्वत संसार में कहना कठिन है। जैसे नाटक में जिसका काम पूरा होता है वो अभिनेता रंगमंच से प्रस्थान करता है। अतः मन को यही समझाना है कि पृथ्वी के इस विशाल रंगमंच पर एक विशाल नाटक है। इस नाटक की प्रत्येक घटना प्रत्येक दृश्य पूर्व नियोजित है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता पार्थ, कोई भी टाल नहीं सकता। परंतु जो इस नाटक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है तो दुख अंशमात्र भी नहीं रहता। ज्ञानी वही है जो जीवन में निर्माण होने वाली प्रत्येक घटना को आनंद से स्वीकार करता है। और मुझे विश्वास है मुझे विश्वास है कि तुम भी जीवन की प्रत्येक घटना को आनंद से स्वीकार करोगे। पार्थ, मैं तो तुम्हें भिन्न परिस्थिति में अचल, अडोल एवं स्थितप्रज्ञ देखना चाहता हूं, परंतु यह स्थिति तब बन सकती है जब मोह का मन से निर्मूलन होगा।
हे पद्मनाभ, प्रत्येक मनुष्य का अपने पत्नी और संतानों के प्रति अल्प मात्रा में मोह होता ही है।
पार्थ, जिस क्षण इस शरीर का परित्याग होता है उसी क्षण समस्त लौकिक संबंध नष्ट होते हैं। उसके उपरांत कोई किसी का नहीं होता पार्थ, कोई किसी का नहीं होता। अतः निकाल दो अपने मन से ये मोह के अंश और वंश। आत्मज्ञान और आत्माभिमान ही मोह की जड़ें उखाड़कर फेंक देता है और देह अभिमान आध्यात्मिक प्राप्ति को वंचित कर देता है। देह अभिमान ही आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। अनुज, मेरे भी देह को तुम्हें नहीं देखना है। यदि देह को देखोगे तो दैहिक संबंध की स्मृति आएगी। इस श्री कृष्ण का सर्वोत्तम सुंदर शरीर जो तुम देख रहे हो, इसे भी तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है। परंतु हे पार्थ, शरीर से भी कई गुना सुंदर है शरीर में निवास करने वाली आत्मा। वही नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, चिरंतन है। अतः मेरे इस शरीर को देखते हुए भी आत्मज्ञान के नेत्र से तुम्हें चैतन्य ज्योति को ही देखना है। आत्मज्ञान से मृत्यु का भय सदा के लिए नष्ट होता है। आत्मज्ञान ही आत्मा को नष्टो मोहा बना सकता है। आत्मज्ञान ही आदि अनादि स्मृति को जागृत करता है।
हे मनमोहन, मैं इस मोह को अवश्य ही नष्ट करूंगा, क्योंकि यही मोह अंतिम समय मुझे अपने श्रेष्ठ स्थिति एवं श्रेष्ठ प्रारब्ध से वंचित करने वाला है। यही मोह मेरे उद्धार में बाधक हो सकता है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी अभी आपने कहा कि आत्मज्ञान आदि अनादि स्मृति को जागृत करता है, परंतु मैं ये नहीं जानता कि आदि अनादि स्मृति किसे कहते हैं।
सुनो धनंजय, मनुष्य सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य जब प्रथम जन्म प्राप्त करता है, तब वो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र, पूजन योग्य तथा गायन योग्य देवता होता है। यही है उसका आदि रूप। और इस साकार सृष्टि में देह धारण करने के पूर्व मनुष्य आत्मा ब्रह्मलोक में परमात्मा समान देह रहित ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप में होती है। यही है आत्मा का अनादि एवं शाश्वत रूप। हे अर्जुन, इन दो स्वरूप की स्मृति देना ही भगवत गीता का मूल उद्देश्य है। केवल इन दो स्वरूप की स्मृति से ही आत्मा संपूर्ण नष्टो मोहा बन सकती है। अतः गीता में भी कहा है, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादान्मया अच्युत। अर्थात हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, आपकी कृपा से मुझे पुनर्स्मृति प्राप्त हुई है। हे वीर धनंजय, ये दिव्य स्मृति तब आ सकती है जब मोह का पूर्णतः निर्मूलन होगा। मोह का निर्मूलन करना यही गीता का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को बुद्धि में रखते हुए आत्मज्ञान, योग बल एवं आदि अनादि स्मृति द्वारा तुम्हें नष्टो मोहः बनना ही है। पार्थ, जो संपूर्ण मोह को नष्ट करता है वो भविष्य में मोहन बनकर खुशी की बांसुरी बजाएगा। वही संपूर्ण निर्विकारी देवता बनेगा। वही सतयुगी दैवी स्वराज्य का अधिकारी बनेगा। अतः हे गुड़ाकेशा, अब अपना मोह नष्ट कर मन की बांसुरी से सदा सुख शांति, आनंद एवं प्रेम के स्वर निर्माण करते रहो।
हे विश्व नरेश, आपका नाम मोहन क्यों प्रचलित हुआ ये आज मेरी समझ में आया। आपकी परिणाम कारक अमृतवाणी सुनते सुनते ही मेरा बहुतांश मोह नष्ट हो चुका है। हे वासुदेव, अब मुझे अहंकार पर विजय कैसे प्राप्त करनी है इसका मार्गदर्शन करें, क्योंकि अहंकार पर तो बड़े बड़े ज्ञानी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें केशव, मार्गदर्शन करें।
हे कुरुनंदन, यदि स्वयं भगवान का मार्गदर्शन मिले तो असंभव भी संभव होता है। आज के संसार में अहंकार भी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। किसी को धन का अहंकार, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार, किसी को अपनी कला का अहंकार, किसी को अपने शारीरिक सुंदरता का अहंकार, तो किसी को अपने उच्च पद का अहंकार होता है। पार्थ, ज्ञानियों को भी अपने ज्ञान का अहंकार होता है। इतना तो क्या, योगियों को भी अपनी योग साधना का सूक्ष्म अहंकार होता है। चार विकारों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत साधक जब अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है, अहंकार उसी लक्ष्य से उसका अधपतन करता है। भरत श्रेष्ठ, अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है तो यह स्वमान अवश्य स्मृति में रहे कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की निरअहंकारी एवं शक्ति स्वरूप संतान हूं। यदि इस स्वमान की निरंतर स्मृति है तो अपमान का दुख कभी नहीं होगा। अनुज, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें स्वमान का त्याग नहीं करना है। स्वमान का आसन ही देह अभिमान एवं अहंकार से पार कर देता है।
हे मधुसूदन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार किस प्रकार प्रकट होता है।
पार्थ, अहंकारी व्यक्ति को मान सम्मान की बहुत ही अपेक्षा होती है। यदि उसे वो मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है तो अंतर मन में निर्माण होने वाला अहंकार जागृत होने से क्रोध भी आता है। हे भरत श्रेष्ठ, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए जीवन में नम्रता धारण करो। नम्रता ही महानता है। नम्रता ही ज्ञानवान का लक्षण एवं आभूषण है। धनंजय, वृक्ष को जब अतिरिक्त फल लगते हैं तो वो कैसे झुक जाता है, उसी प्रकार जितना ज्ञान उतनी ही नम्रता मनुष्य में आनी चाहिए। कहा भी जाता है, विद्या विनयेन शोभते। सर्वशक्तिवान परमात्मा भी कहते हैं, मैं आपका अत्यंत प्रामाणिक सेवक हूं। अतः हे पार्थ, स्वयं को सेवक अवश्य समझो, परंतु साधारण सेवक नहीं, विश्व सेवक समझो तो स्वमान भी रहेगा और अहंकार भी निर्माण नहीं होगा। अब तुम्हें किसी से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी है। हे पार्थ, सदा निरपेक्ष रहो तो अपेक्षा भंग का दुख होगा ही नहीं।
हे ऋषिकेश, मैंने यह अनुभव किया है, सम्मान प्राप्त होने से मन को थोड़ा सुख अवश्य मिलता है, तो अपमान से मनुष्य अत्यंत दुखी होता है। हे केशव, इस मान अपमान से मुक्त होने का उपाय क्या है?
पार्थ, जिसे स्वयं भगवान सम्मानित करता है उसे और कोई सम्मानित करे या न करे, मन पर उसका कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। अंतिम चिंतन यही रहे कि इस विशाल नाटक में मेरी भूमिका निरअहंकारी बनने की है, परंतु ये भूमिका यथार्थ निभानी है तो एक बात मैं अवश्य ही कहना चाहता हूँ कि भले ही तुम्हारे पास तन, मन, धन, वैभव, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ परिपूर्ण है, तुम्हारे विचार उच्च प्रति के हैं, समाज में तुम्हारा स्थान भी ऊंचा है, परंतु तुम्हारे संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति ये अनुभव ना करे कि तुम्हें किसी बात का अहंकार हो चुका है और तुम साधारण आत्मा को कनिष्ठ समझकर व्यवहार कर रहे हो। पार्थ, संपूर्ण निरअहंकारी वो है जो अहंकार का तनिक मात्र भी प्रकंपन अन्य आत्माओं के प्रति निर्माण होने ही नहीं देता। जो अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता वो दूसरों के हृदय पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। प्रिय अनुज, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है ऐसा मैं समझता हूँ। पांच विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तक जो ज्ञान बिंदु दिए हैं उसका मनन चिंतन करो। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत कोई भी कर्म विकारवश ना हो, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और ये सदा ध्यान रहे कि विकारवश कर्म करना स्वयं पर अन्याय ही करना है।
हे लक्ष्मीकांत, पांच विकारों के उपरांत और कोई विकार शेष तो नहीं है?
हे कुरुनंदन, इसके उपरांत भी ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, इन छोटे विकारों पर भी तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। पार्थ, इन विकारों का संगठन बहुत ही आश्चर्यकारक है। किसी एक विकार को स्वीकारने से वो एक विकार अन्य विकारों को आमंत्रित करता है। अनुज, ये निश्चित है कि तुम्हारे विकार तुम्हें ही नष्ट करने हैं, उसे कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। केवल एक ही आत्मा तुम्हारे विकार स्वीकार कर सकती है और वो है परमात्मा। पार्थ, वो मनुष्य आत्माओं के समस्त विकार अवश्य स्वीकार करता है और उसका स्मृति चिन्ह है मनुष्य ने शिवलिंग पर अर्पण किया हुआ अह का फूल। जिस प्रकार अह का फूल विषैला होता है उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं के पांच विकार भी विषैले होते हैं। अतः निस्संदेह अपने पांच विकार परमात्मा को अर्पण करो।
हे ऋषिकेश, इसी क्षण मैं अपने पांच विकार एवं देह अभिमान परमात्मा को अर्पण करता हूँ।
हे पार्थ, शीघ्र ही इस धरा पर दैवी स्वराज्य अर्थात सतयुग आने वाला है। यदि तुम दैवी स्वराज्य में जन्म प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मा में दैवी गुण एवं दैवी संस्कार परमात्मा द्वारा संगम युग पर प्राप्त करो। केवल इसी संगम युग पर दैवी गुण धारण करने से भविष्य में मनुष्य देवपद प्राप्त करता है। अतः इस गुप्त युग में दैवी गुणों का महत्व असाधारण है।
हे पद्मनाभ, जिन गुणों से मनुष्य गायन योग्य एवं पूजन योग्य देवता बनता है, वो दैवी गुण निस्संदेह अमूल्य है। अतः उन समस्त दैवी गुणों का ज्ञान प्राप्त कर मैं अपने जीवन में धारण करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे दैवी गुणों की सूची ही प्रदान करें।
पार्थ, वो दैवी गुण है पवित्रता, अंतर्मुखता, हर्षित मुखता, नम्रता, शीतलता, सहनशीलता, उदारता, अडोलता, निश्चिंतता, गुणग्राहकता, साहस, निर्भयता, धीरता, सरलता एवं मधुरता। यही दैवी गुण मनुष्य को सुख शांति के चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। पार्थ, दैवी गुण प्राप्त करने का मूल आधार है मन वचन कर्म से जीवन में पवित्रता की धारणा करना। परंतु पवित्रता की धारणा तब हो सकती है जब असुरी गुणों का पूर्णतः त्याग होगा। पवित्रता ही दैवी स्वराज्य का आधार है। अतः मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना तुम्हारा परम कर्तव्य है। पवित्रता नहीं तो जीवन में दैवी गुण भी धारण नहीं कर सकते। अनुज, पवित्रता की सुंदर हरियाली पर ही दिव्य गुणों के सुगंधित फूल स्वयं ही निर्माण होते हैं। दैवी गुणों के फूल ही आत्मा का श्रृंगार है पार्थ। यूं तो देह का श्रृंगार छोटा बालक भी जानता है, परंतु तुम तो ज्ञानी बन चुके हो। अब तुम्हें दिव्य गुणों से अपनी आत्मा को श्रृंगारना है पार्थ। देह का विनाशी श्रृंगार अल्प काल में नष्ट होता है, परंतु आत्मा का ये अविनाशी श्रृंगार मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारे साथ रहने वाला है पार्थ। अंत में जब तुम इस शरीर का परित्याग करोगे, तब आत्मा में दैवी गुण, मुख में ज्ञान गंगा, मन में परमात्मा स्मृति का अमृत हो तो तुम्हारी अंत मते सर्वोत्तम गति हो जाएगी। यन यन वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्राव भाविता। अर्थात, हे कौन्तेय, अंत काल में मानव जिस भाव का स्मरण करते करते देह का परित्याग करता है, फलस्वरूप पुनर्जन्म में वही भाव से प्राप्त होता है। पार्थ, यदि तुम अपनी उत्तम गति चाहते हो तो आत्मा में कोई भी निर्बलता नहीं रहनी चाहिए। जिस प्रकार निर्बल शरीर का श्रृंगार निष्फल होता है, उसी प्रकार यदि आत्मा में आत्मबल ना हो तो उसका श्रृंगार भी निष्फल होता है। अतः दैवी गुणों के साथ आत्मा को अष्ट शक्तियों से संपन्न करना आवश्यक है, क्योंकि अष्ट शक्ति से ही आत्मा शक्तिशाली एवं परिपूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकती है। अष्ट शक्तियां ही आत्मा की वास्तविक सुरक्षा है।
हे राधा रमन, मैं उन अष्ट शक्तियों का ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आत्मा की शक्तिशाली अवस्था प्राप्त करनी है। ये शक्तिशाली अवस्था ही मुझे सदा योगयुक्त बनाने में सहाय करेगी। अतः अष्ट शक्तियों का स्वाध्याय आरंभ करें केशव।
अनुज, पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। जैसे सहनशीलता गुण है, वैसे वो शक्ति भी है। उस वृक्ष को देखो पार्थ, इस मार्ग से जाने वाले यात्री वृक्ष के छांव में बैठते हैं। वे फल प्राप्त करने हेतु वृक्ष को कंकड़ भी मारते हैं, परंतु वृक्ष की यही विशेषता होती है कि कंकड़ का आघात सहन करने के पश्चात भी वो यात्री से प्रेम ही करता है, और उसका प्रमाण है वृक्ष ने यात्री को दिया हुआ मधुर फल। पार्थ, वृक्ष के भांति अजात शत्रु योगी की भी यही अवस्था होती है। इसी समाज के मनुष्य उसे कभी कभी कटु वचन के कंकड़ मारते हैं, परंतु वृक्ष के भांति योगी के मन में उनके प्रति सदा प्रेम एवं कल्याणकारी भावना होती है। यदि योगी बनना है तो उसके लिए प्रथम आवश्यक है सहनशीलता की शक्ति। सहनशीलता के कारण ही मनुष्य को महानता प्राप्त होती है। अब दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। अनुज, तुमने विशाल सागर को तो देखा ही है, सारे नदियों का जल वो अपने में समा लेता है, चाहे नदी का जल निर्मल हो या मलिन। परंतु सागर की यही विशेषता है कि वो शंख, सीप एवं मोती अपनाता है और व्यर्थ वस्तुओं का किनारा करता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की वृत्ति होनी चाहिए। उसके संबंध संपर्क में कैसा भी गुण अवगुण युक्त व्यक्ति आए हैं, परंतु मनुष्य ने उस व्यक्ति का किनारा नहीं करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, किनारा ही करना है तो मन बुद्धि से उसके अवगुणों का किनारा करो, परंतु उसके गुण अवश्य ही स्वयं में समाने चाहिए। यह है यथार्थ समाने की शक्ति। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा कल्याण अथवा अकल्याण करने के लिए आया है, इसकी परख अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में कौन कभी किसका किस प्रकार विश्वासघात करेगा यह ध्यान में ही नहीं आता। विश्वासघात होने से ही मनुष्य को अत्यंत दुख होता है, अतः परखने की शक्ति प्राप्त करना इस युग में अति आवश्यक है। चौथी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। यह निर्णय करने की शक्ति ही परखने की शक्ति का आधार है। किसी वस्तु को हम भली भांति परख लेते हैं, तब ही बुद्धि निर्णय करती है कि इस वस्तु को खरीदना है अथवा नहीं। अतः हे पार्थ, हमारी निर्णय शक्ति हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए।
अब मेरे ध्यान में आया है कि इन शक्तियों का उपयोग व्यावहारिक जीवन के लिए भी है।
हे धनंजय, पांचवी शक्ति तो बहुत ही जीवनोपयोगी है और उसका नाम है सामना करने की शक्ति। पार्थ, जब जीवन में अचानक प्रतिकूल परिस्थिति का तूफान आता है अथवा किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मानवीय मन डावाडोल होता है। ऐसे समय सामना करने की शक्ति जीवन का आधार बनती है। यदि आत्मा में सामना करने की शक्ति नहीं है तो प्रतिकूल परिस्थिति तन और मन पर विपरीत परिणाम कर सकती है। अतः प्रत्येक मानव के पास सामना करने की शक्ति आवश्यक है। छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति। समाज में सभी के कल्याणार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य तो होते ही है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने महान कार्य के लिए सहयोग की अंगुली देना आवश्यक है। पार्थ, तुम तो जानते ही हो कि सहयोग से गोवर्धन पर्वत भी उठाया जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति में सहयोग की यह शक्ति निर्माण होगी तो समाज कल्याण के अनेक कार्य सहज ही सफल हो सकते हैं। सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। पार्थ, जिस प्रकार कच्छप अपने पांव केवल कर्म करने अर्थ विस्तारित करता है, उसी प्रकार मनुष्य ने अपने कर्मेंद्रियों का यथार्थ उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ किसी विषय का अतिरिक्त विस्तार भी नहीं करना चाहिए, अर्थात मनुष्य ने विस्तार को संकीर्ण करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान विस्तार में भी प्रदान किया जाता है तो सारांश में भी प्रदान किया जा सकता है। अतः विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति अथवा कला प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए। इस शक्ति की स्मृति रहने के लिए मंदिरों में कच्छप की प्रतिकृति अवश्य होती है। अब आठवीं और अंतिम शक्ति है समेटने की शक्ति। यही शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अनुज, हम जब किसी यात्रा के लिए निकलते हैं तो यात्रा में जो आवश्यक साधन होते हैं उसे ही समेटकर यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। पार्थ, हमारी गुप्त एवं महत्वपूर्ण यात्रा मृत्यु के उपरांत होती है। बोलो पार्थ, इस अंतिम यात्रा के समय तुम क्या साथ ले जाने वाले हो? अनुज, इस प्रश्न का उत्तर तुम दे सकते हो?
केशव, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। इसका उत्तर देना कठिन है, क्योंकि इस यात्रा के समय ये देह भी साथ में आने वाला नहीं है। हे जनार्दन, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
पार्थ, इस यात्रा के समय प्रत्येक यात्री के साथ होता है। कर्म के आधार से निर्माण होने वाला उसका प्रारब्ध एवं संस्कार। अनुज, अंतिम यात्रा का प्रबंध अभी से ही करो, क्योंकि तुम्हें समेटना है श्रेष्ठ कर्म के आधार से निर्माण होने वाला श्रेष्ठ दैवी प्रारब्ध एवं दैवी संस्कार। ऐसा दैवी प्रारब्ध एवं दैवी संस्कार इस विश्व में बहुत ही अल्प आत्माओं के भाग्य में होता है। मैं जानता हूं वर्तमान समय समाज में तमोगुण की परिसीमा हो चुकी है, परंतु उसी समाज को सतोगुण में परिवर्तन करना ये तुम्हारे लिए समय की ललकार है। पार्थ,
हे मर्यादा पुरुषोत्तम, वर्तमान समय भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं इस समाज में मैं देख रहा हूं, परंतु कौन सी आत्मा में सतोगुण है अथवा कौन सी आत्मा में तमोगुण है, इसका परीक्षण करना कठिन है।
नहीं भरत श्रेष्ठ, इसका परीक्षण करना तो बहुत ही सहज है। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है, इसी के आधार पर हम ये प्रतीत कर सकते हैं कि कौन सी आत्मा में तमोगुण है एवं कौन सी आत्मा में सतोगुण है। पार्थ, मानव का कर्म ही उसके गुणों का दर्पण है। मानव के हाथ किसी को मृत्यु दे सकते हैं, तो वही हाथ जीवन दान भी दे सकते हैं। नयन भ्रष्ट कर्म भी देख सकते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म भी देख सकते हैं। ये कान परनिंदा श्रवण कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक प्रवचन भी श्रवण कर सकते हैं। मुख कटु वचन बोलता है, तो यही मुख वरदान भी दे सकता है। मनुष्य के पांव मदिरा प्राशन करने के लिए कहीं जा सकते हैं, तो किसी आश्रम की ओर भी जा सकते हैं। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को किस प्रकार की आज्ञा देती है, इसी के आधार पर ही सतोगुण अथवा तमोगुण निर्माण होता है। पार्थ, हम ये भी परीक्षण कर सकते हैं कि मनुष्य का मन प्रभु चिंतन करता है अथवा विषय विकारों का चिंतन। ऐसी ही बुद्धि कोई आत्मघात की निर्णय देती है अथवा आत्मोन्नति का निर्णय देती है। इन समस्त स्थूल और सूक्ष्म कर्म के आधार से ही सतो रजो तमो इन गुणों का निर्माण होता है। अर्जुन, ये सदा ध्यान रहे कि तमो गुण से असुरी संस्कृति, तो सतो गुण से दैवी संस्कृति निर्माण होती है। यदि तुम्हें दैवी कुल में जन्म प्राप्त करना है एवं दैवी स्वराज्य का अधिकारी बनना है, तो पार्थ पहले अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन बुद्धि पर राज्य करो। जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों पर तथा मन बुद्धि पर राज्य करता है, वही भविष्य में उच्च कोटि का प्रशासक बनता है। यही चक्रवर्ती राजा बनने का गुह्य रहस्य है पार्थ, यही चक्रवर्ती राजा बनने का गुह्य रहस्य है पार्थ। इसकी विस्मृति कभी ना हो कि ये शरीर रथ है एवं इस रथ को चलाने वाली आत्मा रथी है। अर्थात तुम्हें कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होना है, परंतु राजा बनकर कर्मेंद्रियों रूपी आशुओं को नियंत्रित कर उन्हें आत्मोन्नति के मार्ग पर चलाना है। इस प्रकार कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखो। जितना तुम अपने कर्मेंद्रियों को वश में रखोगे, उतनी ही आत्मा सतो प्रधान होगी और तुम्हें अवश्य ही आत्मदर्शन होगा पार्थ, तुम्हें अवश्य ही आत्मदर्शन होगा।
आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा, भूला राही अपने पथ को, अपने पथ को स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन।
हे अर्जुन, वास्तविक स्वराज्य अथवा वास्तविक रामराज्य वही है जहाँ राजा और प्रजा दोनों का अपने कर्मेंद्रियों पर राज होगा। ये परिभाषा सर्वशक्तिमान परमात्मा की है जो इस भारत भूमि पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहा है। पार्थ, दैवी स्वराज्य तब स्थापन होगा जब असुरी गुणों का अर्थात तमो गुण का अंत होगा। वर्तमान समय तमो गुण के कारण ही समाज में कई कठिन परिस्थितियां निर्माण हुई है, परंतु भयभीत होकर पलायन ना करो, उसका निवारण करो। उसके लिए आवश्यक है हिम्मत और साहस। पार्थ, जो हिम्मत हारता है वो सब कुछ हारता है, सब कुछ हारता है।
ये हार इसलिए होती है श्रीनाथ कि कठिन परिस्थिति का निवारण करते समय कभी कभी समाज साथ नहीं देता, कई व्यक्तियों का कड़ा विरोध होता है, कई प्रतिकूल परिस्थितियां निर्माण होती है।
भरत श्रेष्ठ, प्रतिकूल परिस्थिति का निवारण कैसे करना है इसका आदर्श इतिहास में अवश्य है। ऐसे कई महान पुरुष है जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिस्थिति ने साथ नहीं दिया था, समाज ने कड़ा विरोध किया तथा समय भी उन्हें साथ नहीं दे रहा था, परंतु हिम्मत, साहस एवं दृढ़ निश्चय के आधार पर उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। पार्थ, प्रतिकूल परिस्थिति में ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना, यही तो पुरुषार्थ है। एक बात अवश्य ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मजोत बुझने नहीं देना। पार्थ, आत्मजोत प्रज्वलित होने के लिए ज्ञान घृत के साथ दैवी गुण एवं अष्ट शक्तियों से आत्मा को संपन्न करोगे तो सतो गुण का प्रकाश निखर आएगा, आत्मा की ज्योत और ही प्रज्वलित होगी, आत्मा शक्तिशाली होगी, आत्मा को सुख शांति युक्त जीवन का अधिकार प्राप्त होगा।
हे वासुदेव, पवित्रता एवं राजयोग के आधार से समस्त दैवी गुण एवं अष्ट शक्तियां मैं अवश्य प्राप्त करूंगा, क्योंकि इसे प्राप्त करने से ही मेरा जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाएगा।
भरत श्रेष्ठ, तो उसके लिए निरंतर योगी बनने की आवश्यकता है। निरंतर योगी वो है जो सदा स्वयं को अविनाशी आत्मा अनुभव करते हुए परमात्मा की प्रेम युक्त स्मृति में रहता है। जब मन में लगन है तो मगन अवस्था सहज ही प्राप्त हो सकती है, और वो अवस्था प्राप्त करने के लिए अभी स्वयं का मन उस एक परमात्मा में लगाओ।
केशव, केशव, ये मन तो सबसे चंचल है, इसे परमात्मा के स्मृति में सदा स्थिर करना अत्यंत कठिन है।
इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी। अर्थात जिस प्रकार वायु नाव को खींच लेती है, उसी प्रकार विषयों में विचलित हुई इंद्रियां मनुष्य का मन खींच लेती है। अतः हे अर्जुन, अपने मन को स्थिर करो।
हे केशव, इस चंचल मन को स्थिर करने का उपाय क्या है, कैसे इस मन को स्थिर करें?
अर्जुन, यदि मन को स्थिर करना है तो तुम प्रथमतः अपनी बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि स्थिर करने से मन स्वयं ही स्थिर हो जाएगा।
हे मधुसूदन, स्थिर बुद्धि का लक्षण कौन सा है, अथवा किसकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहना चाहिए?
तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, इंद्रिय निग्रह करके जिसने इंद्रियों को अपनी वश में रखा है, ऐसे इंद्रियाजित मनुष्य की बुद्धि को ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिसकी मन बुद्धि स्थिर हो जाती है वही सर्व संबंधों का रस परमात्मा से प्राप्त करता है। अतः तुम्हें सर्व संबंध एक परमात्मा से ही जोड़ने हैं। पार्थ, जब तुम योग साधना के लिए बैठोगे तो यही संकल्प बारंबार करो कि मैं अशरीरी ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। योग में किसी भी देहधारी की स्मृति न आए, क्योंकि योग का अंतिम उद्देश्य है विदेही आत्मा का विदेही परमात्मा से मंगल मिलन होना। यदि यह मिलन साध्य हुआ तो परमात्मा से आने वाला प्रकाश प्राप्त करने से आत्मा को सर्वगुण एवं शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त होती है। यही राजयोग की अंतिम एवं श्रेष्ठ अवस्था है। यही संपूर्ण दैवी गुण तथा अष्ट शक्तियां प्राप्त करने की विधि है।
हे पद्मनाभ, मैं इस अमूल्य राजयोग को अपने जीवन में सदा के लिए स्थान देना चाहता हूँ।
पार्थ, तुम्हें निरंतर योगी तो बनना ही है, परंतु विशेष शक्तिशाली योगाभ्यास तथा विश्व के प्रति योगदान प्रातःकाल के पूर्व किया जाता है, जिसे अमृत वेला कहते हैं। अतः कल से ही इस अमृत वेला में अपनी योग साधना आरंभ करो। अमृत वेले उठते ही अपने मन बुद्धि को समेट कर निस्वार्थ प्रेम से परमात्मा की स्मृति में बैठो। योग में अशरीरी अवस्था प्राप्त करना ही मुख्य पुरुषार्थ है। यदि विश्व कल्याण के लिए योगदान देना है तो योग में सूक्ष्म वायुरूप शरीर धारण कर विश्व के गोले पर बैठ जाओ। परमात्मा से प्राप्त होने वाला प्रकाश और शक्तियों के प्रकंपन समस्त विश्व को प्रदान करो। हे योगेश्वर अर्जुन, यहाँ का एक एक कण योग शक्ति से तुम्हें पावन करना है। पांच तत्वों को भी योगदान देकर उन्हें सतो प्रदान करना है। प्रत्येक कर्म तुम्हें परमात्मा की स्मृति में ही करना है, अर्थात तुम्हें बैठक योग के साथ कर्म योगी भी बनना है। भरत श्रेष्ठ, कर्म योगी को एक साथ तीन प्राप्तियां होती है। प्रथम प्राप्ति जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होकर आत्मा पावन होती है। दूसरी प्राप्ति वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म होता है, जिस कर्म से समस्त कर्म बंधन समाप्त होते हैं, तथा तीसरी प्राप्ति है भविष्य में श्रेष्ठ प्रारब्ध निर्माण होता है, अर्थात दैवी स्वराज्य का अधिकार प्राप्त होता है। अतः अमृत वेले की साधना समाप्त होने के पश्चात तुम्हें कर्मयोगी अवश्य बनना है, क्योंकि इस संसार में कर्मयोगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगम् असक्तः सविष्यते। हे अर्जुन, अनासक्त होकर इंद्रियों को वश करके जो समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ योगी होना चाहते हो तो राजयोग का अभ्यास अवश्य करना।
हे मधुसूदन, जिस प्रकार अनेक गुरुओं ने अनेक शिष्यों को साधना करने के लिए अनेक मंत्र दिए हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया है?
उसने एक मंत्र अवश्य दिया है। ये मंत्र है मन मनाह भव, अर्थात मन ही मन मेरा स्मरण करो। मन मनाह भव, ये दो शब्द ही परमात्म ज्ञान एवं राजयोग का सारांश है। राजयोग ही संसार के अनेक समस्याओं का अंतिम उपाय है। राजयोग ही मनुष्य जीवन को सरल, सत्य, तनाव मुक्त तथा आनंद युक्त करता है। राजयोग से ही समस्त दुखदायी बंधन नष्ट होते हैं। राजयोग ही जीवन मुक्ति का प्रथम आधार है। राजयोग से ही योगी को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाली कर्मातीत अवस्था प्राप्त होती है। अर्थात इस विषय में कल का स्वाध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्थ, आत्मा की कर्मातीत एवं जीवन मुक्त अवस्था का ज्ञान ही परमात्मा द्वारा प्राप्त होने वाला संगम युग का अनमोल उपहार है। इस विषय में मैं इतना ही कथन करता हूं कि ये अवस्था कोई विरला ही प्राप्त कर सकता है।
हे पद्मनाभ, मैं ये नहीं जानता कि आत्मा की कर्मातीत अवस्था कैसे होती है, परंतु मैं ये अवश्य अनुभव कर रहा हूं कि परमात्म ज्ञान का भंडार भिन्न भिन्न ज्ञान रत्नों से संपन्न है। आज का ये स्वाध्याय मुझे निर्विकारी होने के लिए अवश्य सहाय करेगा। ये एक एक स्वाध्याय ही भगवद गीता का एक एक अध्याय है। केशव, एक एक अध्याय है। आज के इस स्वाध्याय के लिए मैं अत्यंत उपकृत हो चुका हूं। हे वासुदेव, आपने कहा कर्मातीत एवं जीवन मुक्त अवस्था कोई विरला ही प्राप्त करता है, अर्थात इस विषय में कल का स्वाध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल इसी स्थान पर ये महान स्वाध्याय श्रवण करने अर्थ मैं अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा। यहां से प्रस्थान करने के पूर्व आपको मेरे कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम।
ओम शांति। इस भाग में आपने ये श्रवण किया कि पांच विकारों के कारण ही आज का ये संसार दुखी एवं अशांत हो चुका है। समाज में निर्माण होने वाली अनेक समस्याओं की जड़ पांच विकार ही है। इन्हीं पांच विकारों को गीता में असुरी गुण कहा गया है। उसका निर्मूलन करने का एकमात्र उपाय है आत्मा को दैवी गुणों से संपन्न करना। यदि आत्मा को अचल, अडोल एवं शक्तिशाली करना है तो राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियां अवश्य प्राप्त करें। राजयोग ही स्वयं को, परिवार को, समाज को तथा समस्त विश्व को ही सुख शांति संपन्न करने का शाश्वत उपाय है। ओम शांति।